ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी मार्च शीर्ष 4 गते को होने जा रहे चुनाव के लिए कल से प्रभावी होने के हिसाब से निर्वाचन आचार संहिता क्रियान्वयन में निर्वाचन आयोग को सौंपी गई समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची के त्रुटियों को आयोग की समय सीमा के भीतर सही किया जाएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत का कथन। पिछले जुलाई से अब तक 25,543 लोगों में पाया गया डेंगू का संक्रमण और सऊदी अरेबिया ने मक्का और मदीना आने की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एकीकृत सरकारी प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को होने जा रहे चुनाव के लिए आश्विन 12 गते बुधवार से प्रभावी होने के हिसाब से निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आचार संहिता 2079 लागू किया है। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने आचार संहिता का क्रियान्वयन और पालन करने का सभी से आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने मार्गशीर्ष 4 गते को होने वाले चुनावों में उम्मीदवारों और पार्टियों के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में आज राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि 2074 के प्रतिनिधि सभा चुनाव में निर्दिष्ट व्यय की सीमा को बढ़ाना और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समान व्यय सीमा न होने जैसी पार्टियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी और उम्मीदवार आचार संहिता के साथ ही निर्धारित व्यय सीमा का भी पालन करेंगे। बता दें कि वैशाख 30 गते को हुए चुनाव में अपने खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले कुल 1,23,624 उम्मीदवारों के खिलाफ प्रति उम्मीदवार 7,50,000 रूपये तक के जुर्माने के साथ कार्रवाई आयोग ने की है। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची के त्रुटियों को नेपाली कांग्रेस ठीक करने जा रही है। नेपाली कांग्रेस द्वारा आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाली कांग्रेस ने कहा कि वो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर बंद सूची के नामों को सही करेगी। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत ने कहा कि कम समय में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में कुछ त्रुटियां हुई थी, जिन्हें अब ठीक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। प्रवक्ता डॉ महत ने कहा कि आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी संयंत्र सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सुझाव जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने दो बार पारित किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उस विधेयक का प्रमाणीकरण नहीं किया, जो कि सरासर कानून का उल्लंघन है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ महत ने कहा कि राष्ट्रपति के इस कदम से नेपाली नागरिकता प्राप्त करने वाले नेपाली माता पिता के बच्चे नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार से वंचित है, साथ ही ये संवैधानिक सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक शासन के मूल्यों पर गंभीर हमला है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बच्चों से संबंधित एक पुस्तिका का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आज आयोजित विशेष समारोह के बीच राष्ट्रपति भंडारी ने बच्चे राष्ट्रीय का गौरव है अवधारणा वाली पुस्तिका का लोकार्पण किया। नवरात्रि के दूसरे दिन आज दुर्गा स्वरूपी ब्रह्मचारिणी देवी की विधिपूर्वक पूजा आराधना की गई। ऐसा मान्यता है कि इस दिन पूजा आराधना करने से ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल ने अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संबंधी CPF कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रिया में जारी कार्यक्रम में उन्होंने 2022 से 27 तक के लिए कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य और कृषि, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्राविधिक सहयोग प्राप्त होगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार मादा मच्छरों के काटने से फैलने वाला डेंगू नेपाल के 76 जिलों में फैल गया है। डेंगू से अब तक 25,543 लोग बीमार हो चुके हैं, जो इस साल जुलाई से देखने को मिला है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक बागमती प्रदेश में सबसे ज्यादा 19,910 लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब तक डेंगू से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार प्रदेश, जिला, स्थानीय स्तर और स्वास्थ्य संस्थाओं की मांग और उपलब्धता के आधार पर डेंगू रोग निदान परीक्षण किट उपलब्ध करा रही है। साथ ही डेंगू अनुसंधान और लार्वा विनाश और जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों को बढ़ा रही है। बता दें कि नेपाल में साल 2061 में डेंगू के मरीज देखे गए थे और उसके बाद से हर साल डेंगू के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर ने कहा कि वैदेशिक रोजगार से लौटे नागरिकों को पुनर्एकीकरण परियोजना प्रदेश और स्थानीय तहों में संचालन में लाया गया है। आज सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कुंवर ने कहा कि स्विस सरकार की मदद से विदेशी रोजगार से लौटे नेपालियों के लिए पुनर्एकीकरण कार्यक्रम तीनों तहों में संचालित है। इसी तरह मंत्री कुंवर ने बताया कि दक्षिण कोरिया से लौटे नेपाली नागरिकों के पुनर्मिलन कार्यक्रम के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगार के लिए परिवर्तन पहल परियोजना, रोजगार प्रोत्साहन और अन्य कार्यक्रम भी स्थानीय और प्रदेश स्तर में संचालित है। कार्यक्रम में मंत्री कुंवर ने कहा कि विदेशी रोजगार में धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने, राहत देने और बचाव और धोखाधड़ी देरी या अनुबंधों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक मार्शल टीम यानी कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन भी किया गया है। विश्व में दुर्लभ माने जाने वाले पक्षियों में से 6 प्रजातियों के पक्षी गुलमी में पाए गए हैं। गुलमी के रिसुंगा वन संरक्षण क्षेत्र और मदाने वन संरक्षण क्षेत्र में दुर्लभ पक्षियां पाए गए हैं। ये जानकारी नेपाल पक्षी संरक्षण संघ गुलमी के परियोजना अधिकृत भरत पंथी ने दी। भारत के एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन ने नेपाली राष्ट्रीय गीत के रचयिता बैकुल माइला को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति कलाम की 91वीं जन्म जयंती के अवसर पर आश्विन 29 गते पश्चिम बंगाल में होने जा रहे कार्यक्रम में माइला को सम्मान ग्रहण करने के लिए फाउंडेशन ने आमंत्रण भेजा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने मक्का और मदीना आने की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक एकीकृत सरकारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नुसुक नाम के इस ऐप के जरिए मक्का और मदीना आने वाले श्रद्धालु अपनी यात्रा का कार्यक्रम और उसकी बुकिंग करा सकते हैं। नुसुक की मदद से दुनिया भर के यात्री पूरे सऊदी अरब की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं, ई वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं और यहां तक कि होटल और फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। इस ऐप पर कई तरह की सेवाएं और सूचनाएं मुहैया कराई गई है, जिसे मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी उम्रा ठीक से पूरी कर सके। अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नुसुक की शुरुआती किंगडम विजन 2030 के उद्देश्यों के मुताबिक हुआ है। कुछ इस तरह की सेवाएं मुहैया कराने वाला मकाम नाम का एक ऐसा ऐप पहले से काम कर रहा था, लेकिन अब ये कहा गया है कि जब तक सभी सेवाएं नुसुक पर ट्रांसफर नहीं कर दी जाती हैं, मकाम पहले की तरह काम करता रहेगा। युगांडा में जानलेवा इबोला वायरस का खतरा काफी बढ़ गया है। यहां इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। युगांडा सरकार ने अब तक इबोला वायरस के 18 मामलों की पुष्टि की है, साथ ही इसके 18 संभावित मामले बताए गए हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस के फैलने की आशंका के बीच कहा है कि इसके लिए अभी तक एक भी टीका नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वायरस के कारण अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 5 की पुष्टि हुई है और 18 संभावित मौतें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस वायरस के प्रकोप से बचाव व मदद करने के लिए पूर्वी अफ्रीकी देश में एक टीम भेजी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी मार्गशीर्ष 4 गति को होने जा रहे चुनाव के लिए कल से प्रभावी होने के हिसाब से निर्वाचन आचार संहिता क्रियान्वयन में निर्वाचन आयोग को सौंपी गई समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची के त्रुटियों को आयोग की समय सीमा के भीतर सही किया जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत का कथन। पिछले जुलाई से अब तक 25,543 लोगों में पाया गया डेंगू का संक्रमण और सऊदी अरब ने मक्का और मदीना आने की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एकीकृत सरकारी प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।